بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتاگرن، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ کارکرم کا آرمبھ ہم سورہ حجرات کی دسویں اور گیارہویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں، اور تلاوت کر رہے ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں میل جول کرا دیا کرو، اور ایشور سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر دیا کی جائے۔ ہے ایمان والو، تم میں سے کوئی گٹ دوسرے گٹ کی ہنسی نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے اچھے ہوں، اور نہ استریاں دوسری استریوں کی ہنسی اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے اچھی ہوں، اور آپس میں نہ ایک دوسرے پر ویانگ کرو، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے پشچات اوگیا کا نام ہی برا ہے، اور جو لوگ اس بات سے پشچاتاپ نہ کریں وہی اتیاچاری ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ دوستو، آپ ہمارے پرسارن کو شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ برابر 93.90 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ روش زیدی کا سلام سویکار کیجیے۔ آج گروار ہے، بہمن کی 14 اور فروری کی 3 تاریخ ہے۔ ساتھ ہی آج اسلامی کیلنڈر کے مبارک مہینے رجب کی پہلی تاریخ ہے، اور پہلی رجب کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا شبھ جنم دیوس ہے۔ اس مبارک اوسر پر ریڈیو ہندی تہران کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کی سیوا میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کی ہماری سبھا کے کارکرموں کی روپ ریکھا کچھ اس پرکار ہے۔ سب سے پہلے آپ خبر سنیں گے، اور اس کے بعد آپ کی سیوا میں کارکرم راجنیتک چرچا پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ اسلامی کرانتی کی سفلتا کی 43 ورش گاٹھ کے اوسر پر ریڈیو ہندی دوارا پیش کیے جانے والے وشیش کارکرموں کی ایک انکڑی سنیں گے، اور انت میں کارکرم آج کی بات پرسارت کیا جائے گا۔ تو کارکرم کے انوسار آپ اب ریڈیو تہران سے راشٹریہ اور انتر راشٹریہ سماچار سنیں گے۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ اب آپ دیش ودیش کی خبروں کو سنیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایران، عراق سہیت دنیا بھر میں امام محمد باقر علیہ السلام کے شبھ جنم دیوس کے اوسر پر جشن کا ماحول۔ ایران نئے ایرانی ورش میں ناہید 1 ورژن کے 2 سیٹلائٹوں کو لانچ کرے گا۔ ایرانی ودیش منتری کے ساتھ عراقی ودیش منتری کی ٹیلی فونی بات چیت، فواد حسین نے تہران اور ریاض کے بیچ وارتا جاری رکھنے پر دیا بل۔ قطر پرمانو وارتا کو آسان بنانے کے لیے اپنے پریاس رکھے گا جاری، قطر کے ودیش منتری کا بیان۔ اور اب آپ مریم مہردادی اور رویس زیدی سے وستار سے سماچار سنیے۔
آج گروار 3 فروری 2022 کو پیغمبر اسلام کے پوتر اور شیعہ مسلمانوں کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کا شبھ جنم دیوس ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے مبارک مہینے رجب کی پہلی تاریخ سن 57 ہجری قمری کو پوتر نگر مدینے میں امام محمد باقر علیہ السلام کا جنم ہوا تھا۔ آپ کے پتا امام زین العابدین علیہ السلام بھی امام تھے، اور آپ کے سپتر امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ایشوری مارگ درشک تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جو پریاس کیے ہیں وہ رہتی دنیا تک امر رہیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی نظروں میں کیول گیان حاصل کرنا کافی نہیں تھا، بلکہ اس کے پرسار کے لیے بھی اتھک پریاس کرنا بھی اتنا ہی ضروری تھا۔
ایران کے انترکش سنستھا کے پرمکھ نے کہا ہے کہ اگلے کچھ مہینوں کے بھیتر ہی ایران ناہید 1 ورژن کے 2 سیٹلائٹ کو زلجناح اور قائم نامک اپگرہ کے ساتھ لانچ کیا جائے گا۔ پراپ رپورٹ کے مطابق اسلامی گنتنتر ایران کی انترکش سنستھا کے پرمکھ حسن سالاری نے راشٹریہ انترکش پراودیوگیکی دیوس کے اپلکش میں آیوجت ایک کاریکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے یہ گھوشنا کی کہ ہم ایرانی کیلنڈر کے نو ورش میں جہاں ناہید 1 ورژن کے 2 سیٹلائٹوں کو زلجناح اور قائم نامک اپگرہوں کو لانچ کرنے والے ہیں، وہیں ناہید 2 سیٹلائٹ کو اور آدھنک بنانے کی پرکریا پر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔
عراق کے ودیش منتری نے اسلامی گڑتنطر ایران کے ودیش منتری کے ساتھ ہوئی بات چیت میں ایران اور سعودی عرب کے بیچ وارتا جاری رکھنے پر بل دیا ہے۔ سماچار ایجنسی فارس کی رپورٹ کے مطابق اسلامی گڑتنطر ایران کے ودیش منتری امیر عبداللہ یان اور عراق کے ودیش منتری فواد حسینی کے بیچ گروار کو ٹیلی فون کے ذریعے کئی اہم مدوں پر بات چیت ہوئی۔ دونوں دیشوں کے ادھیکاریوں کے بیچ ہوئی وارتا میں عراقی ودیش منتری نے بغداد اور تہران کے بیچ سمبندھوں میں نوینتم وکاس کے ساتھ ساتھ پارسپرک ہت کے شیتریہ اور انتراشٹری مدوں پر بھی وچاروں کا آدان پردان کیا۔ عراق کے ودیش منتری فواد حسین نے ایرانی ودیش منتری امیر عبداللہ یان کے ساتھ ہوئی ٹیلی فونی وارتا کے دوران ویانا میں جاری پرمانو وارتا پر چرچا کرتے ہوئے تہران اور ریاض کے بیچ بات چیت کو جاری رکھنے کے مہتو کی اور اشارہ کرتے ہوئے بل دے کر کہا کہ دونوں دیشوں کی آپسی وارتا سے پورے شیتر میں استھرتا اور سرکشا کو جہاں مضبوطی پردان ہوگی وہیں اس کے بہت سارے سکاراتمک پربھاؤ بھی دیکھنے کو ملیں گے۔
قطر کے ودیش منتری نے کہا کہ ان کا دیش پرمانو وارتا کو آسان بنانے کے لیے اپنے پریاس جاری رکھے گا۔ ایرنا کی رپورٹ کے انوسار قطر کے ودیش منتری نے کہا کہ ان کا دیش پرمانو وارتا میں ہر پرکار کی رکاوٹ دور کرنے کا بھرپور پریاس کرے گا۔ قطر کے ودیش منتری نے سمبھاوت روپ سے پرمانو وارتا کی وفلتا پر کڑی چنتا ویکت کرتے ہوئے کہا کہ وہ فارس کی کھاڑی اور پشچمی ایشیا میں ہتھیاروں کی ہوڑ کے پکش میں نہیں ہیں۔ اس سے پہلے قطر کے ودیش منتری شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے الجزیرہ سے وارتا کرتے ہوئے کہا تھا کہ قطر نریش نے اپنے واشنگٹن دورے کے دوران امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن سے ایران کے پرمانو کارکرم کے بارے میں وارتا کی۔
بھارت کے کرناٹک راج میں ریلوے اسٹیشن پر بنے نماز کشک کو لے کر وباد بڑھ گیا ہے۔ پراپت رپورٹ کے انوسار دکشن پنتھی سنگھٹن ہندو جن جاگرتی سمیتی نے بھارتی ریلوے کو ایک پتر لکھ کر بینگلورو کے کرانتی ویرا سنگولی رائنہ ریلوے اسٹیشن میں کلیوں کے وشرام ککش کو کچھ مسلموں دوارا نماز ادا کرنے کے لیے استعمال کرنے پر آپتی جتائی ہے۔ پتر میں سمیتی نے اسے راشٹری سرکشا کے درشٹی کور سے خطرہ بتایا ہے اور آروپ لگایا ہے کہ اگر یہاں نماز پڑھنے کی انومتی دی جاتی ہے تو آگے جا کر ریلوے اسٹیشن کو مسجد میں بدلنے کی مانگ کی جا سکتی ہے۔
یمن کی راشٹریہ مکتی سرکار کے پردھان منتری نے کہا ہے کہ سعودی گٹھ بندھن کے خلاف ہونے والے سبھی حملے اس آکرمنکاری گٹھ بندھن کے پاشوک حملوں کا جواب ہے۔ پراپ رپورٹ کے مطابق پچھلے ہفتے سوموار کو سنیکت عرب امارات کے کچھ حصوں کو یمنی ڈرون اور میزائلوں دوارا نشانہ بنائے جانے پر یمن کی راشٹریہ مکتی سرکار کے پردھان منتری عبدالعزیز بن حبتور نے اپنی پرتکریا دیتے ہوئے کہا کہ جب تک حملہور سعودی گٹھ بندھن دوارا یمن پر حملے جاری رکھتے ہیں تب تک یمن سینا ان حملہوروں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتا رہے گا۔ بدادی کی سنا دورہ ابوظہبی کو یمن کے آنترک معاملوں میں ہستکشیپ کرنے اور دیش میں تناؤ بڑھانے کی کوشش کرنے کے بارے میں بار بار چیتاونی دینے کے بعد پچھلے ہفتے جوابی کاروائی کی۔
9 فروری بدھوار کو وینا وارتا کے نوینتم گھٹنا کرم پر سنوائی کے لیے امریکی سینٹ کی ایک اہم بیٹھک ہونا طے پایا ہے۔ سماچار ایجنسی فارس کی رپورٹ کے مطابق اسلامی گڑتنطر ایران کے خلاف ایک طرفہ پرتیبندھ ہٹانے کے سمبندھ میں ویانا میں جاری وارتا کے نوینتم گھٹنا کرم پر کانگریس کے سینیٹروں کے سامنے پوری رپورٹ پیش کرنے کے لیے ایک سنوائی 9 فروری بدھوار کو ہونے والی ہے، لیکن سینیٹروں کی یہ بیٹھک پوری طرح بند دروازے کے پیچھے ہوگی۔ پراپت جانکاری کے انوسار سینیٹ کی ودیش معاملوں کی سمیتی نے یہ بھی انوروھ کیا ہے کہ ایران کے معاملوں میں امریکی پرتینیدھی رابرٹ مالی اس بیٹھک میں ویانا میں جاری وارتا کی وستریت رپورٹ پیش کریں گے۔ غور طلب ہے کہ ویانا وارتا پر سینیٹ کی سنوائی ایسے سمے میں رکھی گئی ہے کہ جب سینیٹ کی ودیش معاملوں کی سمیتی کے ادھیکش سینیٹر باب مینینڈیز دوارا ویانا وارتا کو روکنے اور اسلامی گڑتنطر ایران کے خلاف کڑا رخ اپنانے کے لیے بائیڈن پرشاسن سے مانگ کی گئی ہے۔
عراق کے پرتیرودھ کرتا گٹوں کی اور سے ترکی کو حملے کی دھمکی کے بعد آج صبح ہی اتر عراق میں موجود ترکی کی چھاونی پر میزائلوں کی بارش ہونے لگی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میزائل حملوں میں شمع کے جائیں میزائل حملوں کی وجہ سے پورے علاقے میں بھے کا ماحول تھا۔
سنیکت عرب امارات پر حملے کے بارے میں ایک اجیات گٹ کے بیان کے بعد بدھوار کی شام ابو دھابی نے بھی حملے کی پشٹی کر دی ہے۔ پراپت رپورٹ کے انوسار یمن کے آنترک معاملوں میں ہستکشیپ اور سنیکت عرب امارات کی اور سے وواد کو ہوا دیے جانے کے بارے میں سنا کی اور سے نرنتر چیتاونی کے بعد بدھوار کے حملے سے پہلے سنیکت عرب امارات 3 چرنوں میں میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنا۔ یمن کی سشستر سینا نے رویوار کو سنیکت عرب امارات کے بھیتر بڑے حملے کیے تھے۔
اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
شوتو راجنیتک چرچا کے دینک کاریکرم میں محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔ نیٹ پرائس نے پرمانو سمجھوتے سے امریکہ کے ایک پکشیہ روپ سے نکلنے کے لیے ٹرمپ پرشاسن کو ذمہ دار بتایا اور کہا ہے کہ ایران کے پرمانو کاریکرم میں اس سمے پرگت ہوئی جب پچھلی سرکار نے پرمانو سمجھوتے سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پینٹاگون کے پروکتا جان کربی نے بدھوار کو دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ نیٹو کے تحت اپنی پرتیبدھتا پر قائم ہے اور اسی پرتیبدھتا کے تحت ہر طرح کی پرستھتیوں سے نپٹنے کے لیے امریکہ نے رومانیا، پولینڈ اور جرمنی میں اپنے سینکوں کو تعینات کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نیٹو کے پوروی دھڑ کی پرتیرودھک شکتی کو بڑھانے کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ بھاجپا کے نیتاؤں نے کانگریس سانسد راہل گاندھی کے اس بیان کی تیور آلوچنا کی ہے جس میں انہوں نے کل کہا تھا کہ بھارت کی کیندر سرکار کی نیتیوں کے کارن چین اور پاکستان ایک دوسرے سے نکٹ آئے ہیں۔ راہل گاندھی نے کیندر سرکار پر لداخ میں بھی بڑی رننیتی غلطی کرنے کا آروپ لگایا تھا۔ بھارت کے ودیش منتری نے راہل گاندھی کا کرڑا جواب دیتے ہوئے پوچھا ہے کہ کیا چین اور پاکستان الگ تھے جو ورتمان سرکار کی نیتیوں کے کارن ایک دوسرے کے نکٹ آ گئے ہیں۔
بھارت کے ودیش منتری ایس جے شنکر کے نیت
نیٹ پرائس نے پرمانو سمجھوتے سے امریکہ کے ایک پکشیہ روپ سے نکلنے کے لیے ٹرمپ پرشاسن کو ذمہ دار بتایا اور کہا ہے کہ ایران کے پرمانو کاریکرم میں اس سمے پرگت ہوئی جب پچھلی سرکار نے پرمانو سمجھوتے سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سمیکشا پیش کریں ساتھی اختر عباس۔
امریکی ودیش منترالے کے پروکتا نے پرمانو سمجھوتے کی ورتمان استھتی کے لیے ٹرمپ پرشاسن کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وینا میں پرمانو سمجھوتے کو پنرجیوت کرنے کے لیے اوسر کی کھڑکی بند ہونے والی ہے۔ نیٹ پرائس نے پرمانو سمجھوتے سے امریکہ کے ایک پکشی روپ سے نکلنے کے لیے ٹرمپ پرشاسن کو ذمہ دار بتایا اور کہا کہ ایران کے پرمانو کاریکرم میں اس سمے پرگتی ہوئی جب پچھلی سرکار نے پرمانو سمجھوتے سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹیکہ کانوں کا خیال ہے کہ امریکی ودیش منتری کا یہ بیان پروپیگنڈے اور دباؤ کی نیتی سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور امریکی ادھیکاری بارمبار یہ سویکار کر چکے ہیں کہ تہران کے خلاف واشنگٹن کی ادھکتم دباؤ کی نیتی بری طرح سے ناکام رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں امریکہ کے ڈیموکریٹ سینیٹر کرس مرفی نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ پرتیبندھوں کی نیتی کا کوئی فائدہ نہیں نکلا اور اس سے واشنگٹن کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ امریکہ کے راشٹریہ سرکشا سلاحکار جیک سیلوین نے جنوری 2022 میں کہا تھا کہ واشنگٹن ٹرمپ کی تراسدی پورن غلطیوں کی قیمت چکا رہا ہے۔ امریکی ودیش منتری اینٹنی بلنکن نے بھی اسی سے ملتا جلتا بیان دیا تھا۔ بلنکن نے 7 دسمبر 2021 کو کہا تھا کہ امریکہ نے 2015 میں پرمانو سمجھوتے سے نکل کر بہت بڑی غلطی کی۔ پچھلے 3 سال کے دوران ٹرمپ کی ادھک سے ادھک دباؤ کی نیتی اور پرتبندھوں کے جاری رہنے کے باوجود ایران نے ادھک سے ادھک پرتیرودھ کی نیتی پر عمل کیا اور واشنگٹن کی اور سے نئے اور پرانے سارے پرتبندھوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور یہی کارن ہے کہ ٹرمپ اپنی ستہ کی انتم دنوں تک تہران کے بارے میں اپنے کسی بھی لکش تک نہیں پہنچ سکے، اور یہ شیت یدھ کے بعد امریکہ کی ودیش نیتی کے اتہاس میں سب سے بڑی ناکامی تھی۔ ایرانی ادھیکاریوں کا خیال ہے کہ امریکی ادھیکاریوں کو اپنے پرانے والوں کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور ان کی غلطیوں کو دہرانے سے بچنا چاہیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
پینٹاگون کے پروکتا جان کربی نے بدھوار کو دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ نیٹو کے تحت اپنی پرتیبدھتا پر قائم ہے، اور اسی پرتیبدھتا کے تحت ہر طرح کی پرستھتیوں سے نپٹنے کے لیے امریکہ نے رومانیا، پولینڈ اور جرمنی میں اپنے سینکوں کو تعینات کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نیٹو کے پوروی دھڑے کی پرتیرودھک شکتی کو بڑھانے کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ سمیکشا پیش کریں ساتھ ہی احمد عباس۔
امریکہ کے راشٹرپتی جو بائیڈن نے بدھوار کو پوروی یورپ اور جرمنی میں 3,000 امریکی سینکوں کی تعیناتی کی منظوری دی۔ 1,700 امریکی سینک پولینڈ میں تعینات ہوں گے اور 1,000 سینک جرمنی سے رومانیا بھیجے جائیں گے۔ 300 سینک جرمنی میں تعینات ہوں گے۔ بائیڈن کے آدیش کے انوسار پینٹاگون علاقے میں ہائی الرٹ سینکوں کی سنکھیا 8,500 سے زیادہ کر دے گا۔ پینٹاگون کے پروکتا جان کربی نے بدھوار کو دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ نیٹو کے تحت اپنی پرتیبدھتا پر قائم ہے، اور اسی پرتیبدھتا کے تحت ہر طرح کی پرستھتیوں سے نپٹنے کے لیے امریکہ نے رومانیا، پولینڈ اور جرمنی میں اپنے سینکوں کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نیٹو کے پوروی دھڑے کی پرتیرودھ شکتی کو بڑھانے کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پروکتا جین ساکی نے بیان دیا کہ ان سینکوں کو یوکرین جنگ کے لیے نہیں بھیجا جا رہا ہے۔ بائیڈن کا نیا آدیش پوروی یورپ میں تناؤ بڑھانے کی امریکہ کی یوجنا کا حصہ ہے، جس کے تحت وہ روس سے ٹکراؤ کی استھتی پیدا کر رہا ہے۔ حالیہ سپتاہوں میں واشنگٹن نے روس کے خلاف سوچی سمجھی منوویگیانک جنگ چھیڑ رکھی ہے، اور نیٹو کے ساتھ مل کر لگاتار یہ آروپ لگا رہا ہے کہ روس یوکرین پر حملہ کرنے والا ہے۔ واشنگٹن چاہتا ہے کہ اس طرح کا ماحول بن جائے کہ اسے پوروی یورپ میں امریکی اور نیٹو سینکوں کو تعینات کرنے کا موقع مل جائے، اور روس بھی سرکشا مدوں کے آدھار پر اعتراض نہ کر پائے۔ اس طرح کی گتویدھیاں پوروی یورپ میں روس اور نیٹو کے ٹکراؤ کی آشنکا بڑھا رہی ہیں۔ ماسکو چاہتا ہے کہ پشچم یہ گارنٹی دے کہ وہ یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں کرے گا، اور روس کی سیماؤں کے قریب نیٹو کے سینک اور سینی اپکرن تعینات نہیں ہوں گے، مگر نیٹو اور امریکہ یہ مانگ سویکار کرنے پر تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے روس کے ادھیکاری آکروش میں ہیں۔ روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین نے منگلوار کو اس سندرب میں کہا کہ روس کو 3 پرمکھ مانگوں پر امریکہ اور نیٹو کی اور سے کوئی اچت جواب نہیں ملا ہے۔ روس کی ایک مانگ یہ ہے کہ نیٹو کا پورب کی اور وستار نہ ہو، دوسرے روس کی سیما کے قریب نیٹو کے اٹیک اپکرن تعینات نہ کیے جائیں، اور تیسرے یورپ میں نیٹو کی سینیہ تعیناتی کو 1997 کی استھتی میں واپس پہنچایا جائے۔ एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अमरीका की ओर से यह बयान दिया जा चुका है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने ही वाला है, मगर फिर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जीन साकी ने कहा कि हम अब ये नहीं कहेंगे कि रूस यूक्रेन पर बहुत जल्द हमला करने वाला है, मगर संभव है कि यह हमला किसी समय हो जाए। फौरन हमले की बात अब हम नहीं करेंगे।
भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस बयान की तीव्र आलोचना की है जिसमें उन्होंने कल कहा था कि भारत की केंद्र सरकार की नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान एक दूसरे से निकट आए हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लद्दाख में भी बड़ी रणनीति गलती करने का आरोप लगाया था। भारत के विदेश मंत्री ने राहुल गांधी का करारा जवाब देते हुए पूछा है कि क्या चीन और पाकिस्तान अलग थे जो वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण एक दूसरे के निकट आ गए हैं। साथ ही भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहा है।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी पर जमकर हमला किया, जिन्होंने कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि उसकी नीतियों के कारण ही चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के निकट आए। उन्होंने सरकार पर लद्दाख में बड़ी रणनीतिक गलती करने का भी आरोप लगाया था। एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि कांग्रेस के शासनकाल में ही 1963 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से शख्सगाम घाटी चीन को सौंप दी थी और 70 की दहाई में चीन ने पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर से कराकोरम हाईवे का निर्माण किया। 70 की दहाई से ही चीन और पाकिस्तान के बीच निकट परमाणु सहयोग स्थापित हुए और वर्ष 2013 में चीन पाकिस्तान व्यापारिक कॉरिडोर शुरू हुआ। जयशंकर ने कहा कि कांग्रेसी नेता स्वयं से पूछें कि क्या पाकिस्तान और चीन अलग थे जो वर्तमान सरकार की नीतियों से एक साथ आए। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की और कहा कि वे नासमझ हैं। उन्होंने इससे पूर्व ट्वीट द्वारा कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद कांग्रेस की नीतियों के कारण ही चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के निकट आए थे। केंद्रीय न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस सांसद को न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर अपनी टिप्पणी को लेकर बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि राज्यों के संघ की आवाज को दबाने के लिए न्यायपालिका, चुनाव आयोग और पेगासस का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरे मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने भी राहुल गांधी की कड़ी निंदा की और उनसे देश की जनता से माफी मांगने की मांग की। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोदी सरकार पर कड़े प्रहार करते हुए सरकार की नीतियों को कठघड़े में खड़ा किया था और कहा था कि भारत कोई साम्राज्य नहीं है, एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ संवाद जरूरी है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जा रहा है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आज की बात, पर उससे पहले स्वतंत्रता प्रभात के अवसर पर पेश है हमारा विशेष कार्यक्रम।
स्वतंत्रता प्रभात।
दोस्तों, इस्लामी क्रांति की सफलता के अवसर पर विशेष कार्यक्रम स्वतंत्रता प्रभात लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, कुरान सर्वोत्तम साधन है इस्लाम को समझने का। यह ग्रंथ अन्य धार्मिक शिक्षा स्रोतों की भांति इंसान के व्यक्तिगत जीवन और उपासना पद्धति में सहारा देने के साथ ही राजनीतिक और सामाजिक विषयों में भी समाज का फ्रेमवर्क तय करती है। तानाशाही पहलवी शासन के खिलाफ ईरान का जन आंदोलन कुरान के सूरह रात की आयत संख्या 11 से मिलने वाली इस सीख से प्रभावित होकर शुरू हुआ कि अल्लाह किसी भी कौम के किस्मत को उस वक्त तक नहीं संवारता जब तक वो खुद को परिवर्तित न करे।
बहुत से विचारक ईरान की इस्लामी क्रांति को कुरान की वापसी का आंदोलन मानते हैं, अर्थात ये ऐसा आंदोलन है जिसमें कुरानी शिक्षाओं ने अपनी भूमिका के जरिए उसे धार्मिक आंदोलन बना दिया। कुरान की ओर वापसी का नतीजा ये होता है कि मुसलमान इस आसमानी ग्रंथ की शिक्षाओं से अपना पोषण करें और साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए उठ खड़े हों। इस संघर्ष के नतीजे में प्रतिष्ठा, गौरव, सरबुलंदी और सबसे बढ़कर अल्लाह का सामिप्य हासिल होता है। पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि कुरान और आवाम की कहानी बारिश और ज़मीन की कहानी है। जब ज़मीन सूख कर मुर्दा हो जाती है तो अचानक अल्लाह उस पर बारिश करवा देता है और ज़मीन में फिर हरकत पैदा होती है। फिर अल्लाह की इच्छा से तेज़ बारिश होती है और ज़मीन फिर हरकत में आती है। इसके बाद दर्रों से नहरें और नदियां बहने लगती हैं जिससे ज़मीन पर पेड़ पौधे अंकुरित होते हैं, वनस्पतियां अंगड़ाई लेती हैं। फिर अल्लाह ज़मीन से वो चीज़ें पैदा करता है जिनसे धरती की सजावट होती है और इंसानों और मवेशियों तथा अन्य प्राणियों को आहार प्राप्त होता है। सूरह मोहम्मद की आयत संख्या 7 में अल्लाह कहता है कि हे ईमान लाने वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को मजबूती प्रदान करेगा।
इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद इमाम खुमैनी ने ईरान और दुनिया के मुसलमानों को कुरानी ज्ञान और शिक्षाओं से करीब करने की कोशिश की जो अल्लाह की ओर से भेजा गया ग्रंथ है। इसलिए कि अगर समाज कुरान और उसकी प्रेरणादायक शिक्षाओं से दूर हो जाए तो धार्मिक समाज में वैचारिक और व्यवहारिक गुमराही की स्थिति पैदा होगी। इसीलिए इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद जिसमें सत्य और आज़ादी पर खास ताकीद थी, कुरान की ओर जनता और शासन व्यवस्था का रुझान बहुत अधिक बढ़ा। इसके नतीजे में कुरान की संगोष्ठियाँ, कुरान के विषय में प्रतियोगिताएँ, कारियों के प्रशिक्षण की क्लासों की संख्या तेज़ी से बढ़ी। कुरान टीवी चैनल और कुरान रेडियो शुरू कर दिया गया। खुद कुरान का प्रकाशन बढ़ा और कुरान की क्लासें बहुत आम हो गईं। इस्लामी गणतंत्र ईरान आज गौरवान्वित है कि विश्व स्तर की कुरान प्रतियोगिताओं में उसकी भागीदारी सराहनीय रूप से बढ़ी है और वैश्विक रैंकिंग के हिसाब से ईरान का स्थान बहुत ऊंचा है।
कुरान की तफसीर या विवरण भी इस्लामी ज्ञानों में महत्वपूर्ण ज्ञान है। ये ज्ञान दरअसल कुरान की बेहद गहरी बातों को विस्तार से बयान करता है और कुरान की आयतों में छिपी सुंदरता के बारे में बताता है। चूंकि कुरान अल्लाह का कलाम है इसलिए उसकी व्याख्या की ज़रूरत है। आसमानी ग्रंथों में कुरान ऐसी किताब है जिसकी सबसे ज़्यादा व्याख्याएं लिखी गई हैं और बहुत बड़ी संख्या में व्याख्याकारों ने बड़ी श्रद्धा से ये काम किया है। इस्लामी क्रांति के बाद कुरान की बातों और शिक्षाओं को आसान शब्दों में बयान करने के लिए पूरे देश में कुरान की तफसीर की क्लासों का आयोजन किया जाने लगा। कुरानी शिक्षाओं के प्रसार के लिए दारुल कुरान संस्था की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन भी एक महत्वपूर्ण काम था। उस्ताद अबुल फजल बहरामपुर ने वर्ष 2016 से पूरे देश में 700 से अधिक तफसीर की क्लासों का आयोजन किया। इन क्लासों का नाम कुरानी जीवन शैली रखा गया। इन क्लासों में 20 से 30 लोग शामिल होते थे और आपस में कुरानी विषयों पर बहस करते थे। इन क्लासों में कुरान को प्रशिक्षण की किताब के रूप में शोधपूर्ण नज़र से देखा जाता था और उसके बारे में बहस होती थी। इन क्लासों में शामिल होने वाले लोग कुरान की आयतों के विवरण से अवगत होने के साथ ही इसका जायज़ा लेते थे कि कुरानी शिक्षाओं को अमली ज़िंदगी में कैसे उतारा जा सकता है।
कुरान की समृद्ध संस्कृति का प्रसार दुनिया के मुसलमानों का इस्लामी गणराज्य ईरान में होने वाले परिवर्तनों और प्रगति से अवगत होना और अन्य देशों की कुरानी गतिविधियों के अनुभवों से लाभ उठाना वे महत्वपूर्ण कारक थे, जिनकी वजह से ईरान की वक्फ व कल्याणकारी संस्था ने कुरान की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन और व्यापक कर दिया। कुरान के अंतर्राष्ट्रीय कुरान मुकाबले इस्लामी गणराज्य व्यवस्था की महान उपलब्धियों में से एक है और इन्हें विश्व स्तर पर कुरान से जुड़े महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में देखा जाता है। ये प्रतियोगिताएं वर्ष 1982 से शुरू हुई और अब तक जारी हैं। केवल दो साल 1983 और 1986 में ऐसा हुआ कि देश में जंग के हालात और सद्दाम शासन की ओर से ईरान के शहरों और बस्तियों पर बमबारी और मिसाइल हमलों की वजह से इन प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया जा सका।
दुनिया में ईरान ने महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया और इसे इस्लामी देशों में कारियों का केंद्र कहा जाने लगा। इस वजह से कुरान के बारे में अधिक महारत और गहराई से शोध कार्य तथा दूसरी गतिविधियां अंजाम पाने लगी। इसी संदर्भ में संस्था की ओर से विशेषज्ञों की टीमें अलग अलग जरूरतों पर काम करने लगी। इनमें कुरान की लिखावट से संबंधित शोध कार्य, कलात्मक विषयों से संबंधित शोध कार्य, इसे कंप्यूटराइज करने संबंधी कार्य, कुरान के प्रकाशन संबंधी कार्य करने वाली टीमें शामिल थीं, जो देश के भीतर और विश्व स्तर पर कुरान के क्षेत्र में सक्रिय संस्थाओं से संपर्क और सहयोग का रास्ता साफ करने में लग गईं। इस्लामी क्रांति से पहले तक ईरान में कुरान के पब्लिशर बहुत कम थे और उनके जरिए छपने वाले कुरान की प्रूफ रीडिंग और दूसरे काम नहीं हो पाते थे। वर्ष 1985 में इस्लामी मार्गदर्शन संस्था ने कुरान के प्रकाशन पर निगरानी की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद से आज तक ये काम इस तरह बढ़ा कि अब 1000 से ज्यादा कुरानी पब्लिशर ईरान में सक्रिय हैं। चार साल पहले तक लगभग 16,59,32,900 कुरान के प्रकाशन का लाइसेंस दारुल कुरान संस्था की ओर से जारी किया जा चुका है। अलबत्ता वर्ष 1985 से पहले जो लाइसेंस जारी किए गए उनको भी जोड़ लिया जाए तो ये संख्या लगभग 20 करोड़ तक पहुंच जाती है।
कुरानी समाज होने का मतलब यह है कि कुरान लोगों के दिलों में उतर जाए और इस स्थिति की मदद से इस्लामी क्रांति अपने सभी बड़े उद्देश्यों को पूरा कर सकती है। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता कहते हैं कि हमें ये बात माननी पड़ेगी कि हमारा समाज वर्षों तक कुरान से दूर रहा। हम इस्लामी गणराज्य व्यवस्था में इस दूरी को खत्म कर रहे हैं और इस क्षेत्र में पिछड़ेपन की भरपाई कर रहे हैं। ये पिछड़ापन काफ़ी ज़्यादा था। शाही हुकूमत के दौर में समाज में औपचारिक रूप से कुरान मौजूद नहीं था। कहीं किसी कोने में कोई ऐसा मिल जाता था जो कुरान का ज्ञान रखता, वो भी कुरान की तिलावत करने की हद तक। कुरान की आयतों के बारे में चिंतन वो भी समाज के स्तर पर बहुत कम था। इस्लामिक क्रांति से पहले जिस तरह की परवरिश होती थी उसकी वजह से हम कुरान से दूर हो गए थे। अब हम इस कमी की भरपाई करना चाहते हैं। क्रांति के बाद से अब तक इस संदर्भ में बहुत सारे काम हुए हैं जिनका नतीजा भी हम आज देख रहे हैं, लेकिन ये अभी शुरुआत है, सफ़र का आगाज़ है। कुरान जिंदगी में रच बस जाना चाहिए। कुरान की शिक्षाएं और बातें केवल जानकारी हासिल करने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी में उतार लेने के लिए हैं। कभी देखने में आता है कि किसी इंसान के पास कुरानी जानकारियां तो बहुत अधिक हैं लेकिन वो कुरान को अपने जीवन में नहीं उतार सका है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कुरान हमारी जिंदगी में चरितार्थ हो, जैसा कि पैगंबर इस्लाम की एक पत्नी जब पैगंबर इस्लाम के अखलाक की बात करती हैं तो कहती हैं कि उनका स्वभाव और अखलाक कुरान था, यानी वे कुरान की मूर्ति थे। यही चीज़ हमारे समाज में आनी चाहिए।
ईरान की इस्लामी क्रांति अपने नारों और लक्ष्यों के आकर्षण की मदद से कुरान को हाशिए से समाज के जीवन की मुख्यधारा में लाने में कामयाब हुई और उसे व्यक्तिगत जीवन की सीमाओं से निकालकर सामाजिक पटल पर लाकर रख दिया, जिसके नतीजे में आज दुनिया में एक महान हकीकत सामने है। कुरान जो इस्लामी क्रांति की बुनियाद और आधार है, अपने इस संदेश के जरिए कि सरदारी तो मोमिनीन का अधिकार है, समाज में तत्वदर्शिता पैदा करता है। विरोधियों ने कुरानी शिक्षाओं को आघात पहुंचाने और उसे समाज से निकालने के लिए कोशिशें तो बहुत ज्यादा की, लेकिन कुरान पर खास तवज्जो और अमल की बरकत से इस्लामी गणराज्य ईरान 40 साल से ज्यादा समय से विश्व साम्राज्यवाद का डटकर मुकाबला कर रहा है और अपनी शक्ति और क्षमता बढ़ाते हुए अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में हम ईरान की इस्लामी क्रांति और इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था की किसी और खूबी तथा किसी अन्य महत्वपूर्ण पहलू के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज की बात।
दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हमारी चर्चा का विषय है, नौकरी मांग रहे युवाओं से लोगों को सहानुभूति क्यों नहीं। अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। रेलवे की भर्ती परीक्षा को लेकर सड़कों पर उतरे नौजवानों में कोई भी सांप्रदायिक ट्वीट या भड़काऊ कार्रवाई में शामिल न हो, लेकिन नफरत की हवा का नुकसान उन्हें भी उठाना पड़ रहा है। नफरत की राजनीति में सीधे शामिल होने या साथ खड़े होने के कारण नौकरी के युवाओं के आंदोलन को कोई गंभीरता से नहीं लेता। वो राजनीति भी नहीं जिसकी चपेट की वजह से ये नफरत की आंधी में ढकेल दिए गए हैं। रेलवे की परीक्षा भर्ती में 1 करोड़ से ज्यादा छात्र फॉर्म भरते हैं। इस संख्या ने सरकार को भले ही थोड़े समय के लिए डरा दिया हो, लेकिन इसके बावजूद 3 साल से यह परीक्षा नहीं हुई है और ये रेलवे की यही एकमात्र परीक्षा नहीं है। हर किसी को भरोसा हो गया है कि ये नौजवान नफरत में ही रहेंगे, नौकरी मांगने के लायक नहीं बचेंगे। प्रयागराज में आंदोलन करने वाले छात्रों की भी पुलिस ने पिटाई की और यहां तक कि आंदोलन खत्म होने के बाद उनके छात्रावास पर भी पुलिस टूट पड़ी। प्रयागराज के एसपी सिटी दिनेश सिंह ने छात्रों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए कहा,
कुछ बगाड़ा साइड के जो एनी बेसेंट एरिया के कुछ लाज में रहने वाले लड़के एकाएक जो है सड़कों संख्या में सड़क पर आगे रेलवे ट्रैक पर, और वहाँ पे इन्होंने रेलवे लाइन पे आकर के रेलवे ट्रेन को रोकने का प्रयास किया। जब खैर ट्रेन तो आकर स्टेशन पर ही उसे कहीं नहीं रुकी, वो टाइमली दोनों तरफ से प्रस्थान हो गया है और उन्हीं लोगों को हम लोग देख रहे हैं वो कौन लोग थे और उनका बाकायदे वीडियो बना हुआ है, उसी से हम एक एक करके चिन्हित कर रहे हैं जो लोग भी इसमें शामिल थे। अभी हमारा ये सर्च अभियान चलेगा कई दिन तक और एक एक जगह एक एक लॉज में चलेगा। हम उसको दिखवाएंगे और जो लोग भी इसमें शामिल थे उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये लड़कों के कोई ऐसा 10-5-7 जो लीडर टाइप थे जो अभी उनसे पूछताछ भी की जा रही है, उनका कहना है कोई रेलवे की भर्ती की डिमांड को लेकर थी। रेलवे भर्ती की जो परीक्षा कर रहे हैं काफी दिनों से ग्रुप डी की नहीं हुई है, उसका डिमांड थी।
राज्यसभा में जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार में मार्च 2020 तक 8,72,000 पद खाली हैं। अगर मीडिया एक महीने तक इसका कवरेज दे दे तो 3 महीने के भीतर 9,75,000 नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी। इतनी सरकारी नौकरी होने के बावजूद सरकार नौकरी नहीं दे रही है, भर्ती परीक्षा निकालकर पूरी नहीं कर रही है, उल्टा नौजवानों को उपदेश दिया जा रहा है कि अपना रोजगार कीजिए और दूसरों को भी नौकरी दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक वत्स छात्रों के खिलाफ पुलिस के हिंसक रवैये का समर्थन करते नजर आए।
जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उस पर इस तरीके का उग्र होकर और सरकारी संपत्ति को क्षति करना ये बिल्कुल उचित नहीं माना जाएगा। ठीक है, बहुत से कारण से परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन उसका बैठ के समाधान किया जा सकता है। इन्होंने सीधा उग्र आंदोलन पे उतर गए तो उग्र आंदोलन पे उतरने के बाद सरकार के पास क्या परिस्थिति बचती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए? लाठियां चलानी ही पड़ती है, लोगों को तितर बितर करना ही पड़ता है। और जिस तरीके से आपने देखा कि धू धू करके सारी रेल की बोगियां जल रही थी, तो वो किसी माने में इसको देश के किसी कोने में कभी भी कोई भी जगह कोई भी कोर्ट या कोई भी सार्वजनिक समझौता में इस चीज को कोई नहीं बर्दाश्त करेगा और कोई इसके साथ नहीं होगा।
इन दिनों नौजवान लूटे पीटे नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने जेब काट ली है और जेब कतरे का नाम नहीं लिया जा रहा है। उल्टा छात्रों से कहा जा रहा है कि उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। पटना के एक छात्र ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा,
आप बोले कि अराजकता करना गलत है, तो बिल्कुल गलत है। हम लोगों को मारना कौन चालू किया? आप मारना चालू किए, आपने गाली गलौज किया। हम लोगों ने किसी पुलिस वाले को नहीं मारा है, ना ही गाली गलौज किए। आप पेट पर लात मारते, गेट खोल के पेट पर लात मारिएगा तो लड़का क्या करेगा? अपना संविधान भी हमको कहता है अगर आप पर कोई हमला कर रहा है आप हमला कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हमला नहीं किया। अगर आप गोली चलाइएगा हम लोग क्या करेंगे बताइए? हम लोग को तो गोली है नहीं, हम लोग जाने देंगे? जान ले लीजिए। अराजकता वाला बात जो बोले, कोई स्टूडेंट अगर अराजकता कर रहा है तो वो गलत है, लेकिन कोई कर नहीं रहा। आपने उसको करना के लिए हुक्सा रहे हैं कि तुम अराजकता करो, ट्रेन को जलाओ, 10,000 का क्षति होगा, 1 अरब रुपया दिखा देंगे, सब रुपया जेबा में धर के मस्त मगन हो जाएंगे। कोई लड़का जबरदस्ती करवाइएगा तो होगा ही, कोई लड़का अपना से नहीं कर रहा है। जितना आपने सवाल पूछा उसका सब एक ही तोड़ है, सरकार निकम्मी हो गई है, इसको सीधे रोड पर लाना पड़ेगा। तब इस्तीफा तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को और रेलवे मिनिस्टर को दे देना चाहिए। वो बोल रहे हैं 1,27,00,000 फॉर्म गिरा।
रेलवे की भर्ती परीक्षा के बारे में प्रदर्शन पटना में भी हुआ, वहां क्या हाल था और इस हिंसक प्रदर्शन का जिम्मेदार कौन और किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, विचार सुनिए पटना विश्वविद्यालय के छात्र पिंटू कुमार के।
एक्चुअली बात ये है यहाँ पे कि पूरे मामले को देखे तो जिस प्रकार से छात्रों पे मतलब कि एक तरह से कह दीजिए कि पुलिस के द्वारा हमला हुआ है, मानिए कि जो वैकेंसी 2019 में आई थी और इसके बाद इस वैकेंसी के बाद लोकसभा के चुनाव में 543 सीटों के लिए जो वैकेंसी आई थी जिसमें तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपये का खर्च हुआ था, वो वैकेंसी फुलफिल कर ली गई, लेकिन छात्रों के लिए जो वैकेंसी आई थी वो आज तक फुलफिल नहीं हुई। और यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है कि जो लोग छात्र प्रदर्शन में थे, हमारे पटना यूनिवर्सिटी से कई लोग छात्र प्रदर्शन में थे, हमारे मित्र ओसामा खुर्शीद सिर्फ 5 मिनट के लिए इसमें मतलब कि भिखना पहाड़ी मोड़ पे खड़े हुए तो उन पर मुकदमा कर दिया गया। ये सबसे बड़ा सवाल है, बस 5 मिनट के लिए खड़े हुए तो उन पर मुकदमा कर दिया गया। उसके बाद और हम बताते हैं, अभी फरवरी में कहा गया है कि 16 फरवरी तक वो मतलब फीडबैक लेंगे स्टूडेंट से, उसके बाद 4 मार्च को उस पे मतलब कि सुनवाई करेंगे। मेरा कहना है 10 दिनों में हो सकता था कि नहीं, जबकि 10 दिनों में हो सकता था कि 10 दिनों में ना करते हुए, क्योंकि जब तक सिर्फ 54 सीट का चुनाव बचेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव का, सिर्फ 54 सीट का चुनाव बचेगा और तकरीबन 10 10 जिलों के कम ही बचेंगे, 9 जिले में लगभग बचेंगे।
पटना विश्वविद्यालय के छात्र पिंटू कुमार का कहना है कि चुनाव को देखते हुए इसे टाला गया है, सही में समाधान नहीं निकाला गया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि इस घटना को बिल्कुल भी टाला जा सकता था।
बिल्कुल इसको टाला जा सकता था, क्योंकि जब से CBT 1 का रिजल्ट आया है और जब से ये बात कही गई है कि हम 384,000 लोगों को बुलाएंगे CBT 2 के लिए, उसी समय से तमाम स्टूडेंट्स में इस बात को लेकर के रोष पैदा हुआ है। और मैं समझ पाया हूँ जितना उसमें ये बात थी कि लोग चाहते थे कि जब ये बात कही गई है कि 20 गुना लोग बुलाए जाएंगे, तो ये 20 गुना लोग 7 लाख होते हैं, तो 7 लाख लोग क्यों नहीं बुलाए जा रहे हैं? तो अगर ये बात क्लेरिफाई कर दी गई होती है कि 7 लाख लोग जो है वो बुलाए जाएंगे, तो मेरी समझ से ये जो हमारे अभ्यर्थी लोग हैं उनका गुस्सा इतना नहीं बढ़ता। और जो ये एक स्टैंड लिया गया कि नहीं, हम जो जितने बुला रहे हैं बिल्कुल ठीक बुला रहे हैं, वो ठीक नहीं है। हमारी समझ से कहीं ना कहीं पर इसमें रेलवे से ही चूक हुई है, और हमारा जो विभाग है जो इस विभाग को देखता है वो उसको इस मामले को देखना चाहिए था। जो हमारे CPROs हैं, दूसरे लोग हैं, उनको इस बात को प्रोपेगेट करना चाहिए था प्रॉपर तरीके से।
नफरत से निकलने के लिए इन्हें 100 झूठ बोलना होगा, और इसके लिए उन्हें पढ़ना भी पड़ेगा, जिसके लिए ईमानदारी है और न ही धीरज और न ही किताब खरीदने के लिए उनके पास पैसे। आज उसी नफरत की वजह से जनता को भी उनकी मांगों पर भरोसा नहीं है, सरकार को गंभीरता से नहीं लेती। अगर लेती तो पिछले 7 साल में अलग अलग राज्यों में नौजवानों ने असंख्य परीक्षाओं को लेकर असंख्य आंदोलन किए, उसका कोई नतीजा भी निकलता। इस सभी इंतजार में हैं कि चुनाव होगा तो जाति या धर्म के नाम पर यही जवान वोट डालेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आलोक वर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये छात्रों का अनादर है।
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में क्या छात्राओं का भविष्य इस तरीके से तय किया जाएगा कि वो वैकेंसीज निकलती हैं, उसके वो फॉर्म के लिए पैसे खर्च करते हैं, फॉर्म के लिए तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं अपने घर बार छोड़ के तैयारी करते हैं, और जब परीक्षाएं लेने की हालत होती है तो कहीं उनको लाठी डंडों से मारा जाता है, कभी परीक्षाएं का पेपर लीक हो जाता है। देखिए, ये पूरा एक अजीब सा एक जनमानस में ये फैल गया है कि जब से ये सरकार आई है तब से बाकी चीजें तो बहुत अच्छी तरीके से चलती हैं। आप बड़े बड़े इवेंट शो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, आप इन्वेस्टर मीट भी कर लेते हैं आराम से, आप बड़ी बड़ी रथ यात्राएं करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब छात्राओं के भविष्य की बात होती है तो आप उनको खाली लाठियां देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर संकेत जी 5 कालीदास मार्ग के पास मुझे लगता है कोई ऐसा 15 दिन नहीं बीता है जब छात्रों के ऊपर लाठियां ना चढ़े हों, और कोई ऐसा विभाग नहीं है। ये तो आप रेलवे की बात कर रहे हैं, आप बैंक की बात कर लीजिए, आप शिक्षक भर्तियों की हाल बात कर लीजिए, आप शिक्षा मित्रों की बात कर लीजिए, आप ग्रुप डी की बात कर लीजिए। लगातार एक ऐसा नेक्सस चल रहा है जो छात्रों को इस बात से बताया जा रहा है कि तुम्हारा काम है फॉर्म भरना, नौकरी मेरे ऊपर देखना है।
यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसी चीज थी जो अब तक हो रही थी, अब उसको बदल दिया गया है जिसकी वजह से ये परिस्थिति पैदा हुई है। रेलवे भर्ती परीक्षा और उसमें पैदा होने वाली नई स्थिति की बारीकियों पर रोशनी डाल रहे हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी।
रेलवे में भर्तियां और बड़ी पैमाने पर भर्तियां एक पुराना सिस्टम रहा है। सबसे पहले रेलवे में एक रिफॉर्म के नाम पर जो जोनल रिक्रूटमेंट होते थे उनमें बदलाव लाया गया और उनको नेशनल रिक्रूटमेंट का नाम दे दिया गया। जब भी ऐसी चीजें होंगी तो बट नेचुरल है वैकेंसीज के कैलकुलेशन में इम्तिहान होने में देरियां होंगी और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बढ़ेंगे। और वो परिस्थितियां रही जब हम लोगों ने भी इस बात को कहा कि ये ठीक नहीं है, और ये सब कुछ भी हुआ वो पहले के जमाने में हुआ, अभी नहीं हुआ। इसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने एनटीपीसी कैटेगरी की जो वैकेंसीज है, जो खासतौर पर कमर्शियल और ऑपरेटिंग के लोग जिसमें आते हैं, उन वैकेंसीज को जो है वो ये CBT 1 और CBT 2 में ले आए। पहले एक इम्तहान होता था, इम्तहान होने के बाद में और उसका रिजल्ट आ जाता था, जो लोग मेरिट पे आते थे और जो लोग मेडिकल पास कर लेते थे उनको जो है वो नौकरी दे दी जाती थी। तो अब उसमें और समय लगने लगा। तो एक चीज है, ग्रुप डी का एक नया मामला आ गया है, अभी 3 दिन पहले आया है, कि जो 1800 के ग्रेड पे में लोग काम करेंगे, जिनका काम है रेलवे में माल ढुलाई करना, पैट्री ढोना, जिनका काम है हेल्पर का काम करना, जिनका काम है जो एक तरीके से जो कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कि कोई ऐसी जरूरत, ये एनटीपीसी के जो लोग हैं इनके दो तरीके के ग्रेड है उसमें। एक ग्रेड तो वो है जिनमें कि 36,000 पे लोग भर्ती होकर के आएंगे आज की तारीख में, दूसरे वो लोग हैं जिनको 25,000 के ऊपर भर्ती होना, और तीसरे वो लोग हैं जो 18,000 की सैलरी पे आएंगे। जो 18,000 की सैलरी पर आएंगे उन बच्चों को तो सिर्फ पटरी ढोनी है, मीनियल काम करने हैं, उनको कोई इतना बड़ा काम नहीं करना है। उनके इम्तहान में भी पहले नोटिस में नहीं निकाला जब भर्ती करना था उनको, अभी इन्होंने 3 दिन पहले बोर्ड से एक चिट्ठी निकाल दी कि उनका भी CBT 1 होगा, CBT 2 होगा।
दोस्तों, धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति ने भारत के युवाओं को मुख्य मुद्दों से भटका दिया है, जिसकी वजह से कभी वो भीड़ बने और कभी भीड़ को सही बताने के लिए खड़े होने लगे। कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अख्तर अब्बास को इजाजत दीजिए।
ये तेहरान है रेडियो हिंदी। श्रोताओं, हमारे प्रसारण आप शॉर्टवे में 31 मीटर बैंड बराबर 93.90 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। अब हमारी सभा यहीं पर समाप्त होती है। रविश जैदी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Thank you.